रामचंद्र जी की कृपा प्राप्त करने वाली ये गोपियों के गर्भ से जन्म लेने वाली गोपियां थीं, जो कि एक महीने का कात्यायनी व्रत साधन के लिए किया था, जो नित्य सिद्धा है, जो राधा जी की काय युवा है, वो लोग नहीं एक महीने की है। अंतिम दिन में वो जान रही थी कि कृष्ण आएंगे, इसलिए इन साधन सिद्धाओं के साथ में इनको संग प्रदान करने के लिए, उनका कसाय कुछ था वो दूर करने के लिए नित्य सिद्धाएं, यहां तक श्रीमती राधिका इत्यादि सभी गोपियां उसमें सम्मिलित हुई थी, सबके वचन उन्होंने चुराए थे। टीकाकारों का ऐसा विचार है, यदि वो संग नहीं दान करती तो कृष्ण उनको कभी भी वो रासलीला में और अपनी सेवा में जुगत सेवा में प्रवेश नहीं करा सकते थे। इसलिए नित्य सिद्धाओं का अथवा काय विवाह शक्तियों का उन्होंने इन लोगों से संग करा करके इनको परिमार्जित करके इस युग बनाया, और पीछे यही तब साधन सिद्धा से साधन सिद्धा होकर के और उनका संग पा करके पीछे से साध्य रासलीला में इन लोगों ने प्रवेश किया। ये समझिए दोनों वही तपोवन वहीं पर है, वहीं पर है दोनों पास ही पास में है, इसलिए दोनों के लिए एक ही समझिए। हाँ, तपोवन में स्पेशली श्रुतियों ने किया था, और वहां पर उन दंडकारण्य और दूसरी वाली ने जो किया था, इसमें थोड़ा सा अंतर है। श्रुतियों ने वहां पर किया था तपस्या कृष्ण को पाने के लिए गोपी भाव से, इसलिए उन लोगों ने आराधना की थी, और उन लोगों से भी गोपियों का संगम होने पर सिद्धाओं का, तब फिर वो लोग भी प्रवेश कर सके। कैन यू स्टूडेंट? हाँ, अभी हम लोग वत्सवन में गए। वत्सवन की कथा हमारे शुभानंद जी और पर्यटक महाराज जी ने आप लोगों को बतलाया होगा। ब्रह्मा मोहन वहीं पर हुआ था वत्सवन में, बस बनने ही बस में उनको वहीं पर छिपाया था ना, वहीं पर तिहाड़ियों में छिपाया था ब्रह्मा जी ने कृष्ण के समस्त बच्चों को और बच्चनों को, और कृष्ण ने जितने भी बच्चे हैं गोप हैं सखा हैं उनकी दृष्टिया कंबली आज इत्यादि उनके स्वरूप उनके स्वभाव सब कुछ कृष्ण बने, और एक बरस तक लीला की। कृष्ण ने ब्रह्मा जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए नहीं, बल्कि वो ब्रह्म मोहन लीला में ही समझ गए थे अघासुर के वध के बाद में कि कृष्ण ये स्वयं भगवान है, मैं इनकी कुछ लीलाओं को देखना चाहता हूं। किंतु थोड़ी सी उन्होंने गड़बड़ी कर दी कि मैं अपनी प्रार्थना करने के प्रभु आपकी लीला में कुछ देखना चाहता हूं, ऐसा नहीं किया, बल्कि अपनी चेष्टा से बछड़ों को और सखाओं को हर करके कंधे में बंद कर दिया, और देखेंगे क्या करते हैं कृष्ण है। अच्छा बात, बल्कि ब्रह्मा जी ने ये गलती नहीं की, जो माया ने उनके द्वारा कृष्ण की इच्छा को पूर्ण किया। कृष्ण की इच्छा थी मैं सब गायों का बेटा बनना चाहता हूं, क्योंकि वो सभी हमें बेटा की तरह में दूध पिलाना चाहती, और मैं जितने ब्रज में प्रौढ़ा महिलाएं हैं गोपियां हैं उनका बेटा बनना चाहता हूं, क्योंकि हमको बेटे के समान उससे भी अधिक अपने बेटे से हमको प्यार करना चाहती हैं और अपना तन पिलाना चाहती हैं, तो कौन ही उनका बेटा मैं हो जाऊं। ये जथा मां प्रपदन दे ताम प्रदन बजान, इसलिए मैं ये करूं, और जितनी ब्रज की गोपियां हैं रमणियां हैं वो मुझको शादी करना चाहती हैं, तो क्यों नहीं इनकी लालसा भी पूर्ण कर दूं। इसलिए ब्रह्मा जी को जो माया के द्वारा आकर्षण करके उनके द्वारा जानबूझ करके इनको चुरवाया बच्चनों को और सखाओं को, और कृष्ण तक सब गोपों का रूप धारण करके बच्चनों का रूप धारण करके यहां तक उनके कंठ का स्वाद स्वभाव इत्यादि लड़िया संबलिया सब कुछ वही बन गए, और एक वर्ष तक गोपियों के बेटे बने और एक वर्ष तक बछड़े बने गौओं के, और उसमें क्या किया गर्गाचार्य के द्वारा ऐलान कर दिया कि इस वर्ष में अपनी लड़कियों की शादी कर दो, इससे जैसा और शायद नहीं मिलेगा, शुभ अवसर नहीं मिलेगा। सब तुम्हारी लड़कियां सब प्रकार से समृद्ध बनेगी और सौभाग्यवान बनेगी। इसलिए सब लोगों ने उसी वर्ष में शादी की। इसलिए कृष्ण बने हुए हैं, क्या बने हुए, जितने गोपाल बालक उन लोगों के साथ में अलग अलग उन गोपियों की शादी हुई, किंतु शादी हुई किसके साथ में, स्वरूपतः कृष्ण के साथ में। और गर्गाचार्य ने यह भी कह दिया सबकी शादी होगी किंतु राधा जी की शादी नहीं होगी कृष्ण से, ये भी बतला दिया, ये अशुभ है उनके लिए। इसलिए उनके साथ में शादी राधा जी के साथ में नहीं हुई, बल्कि उसी वर्ष में अभिमन्यु के साथ में हुई, जो कि उनकी छाया था, वो भी कोई दूसरा नहीं था, वही कृष्ण भी कृष्ण ही थे, कृष्ण उनकी छाया। जैसे छाया पिता को रावण ले गया, ऐसे ही छाया के साथ में छाया राधिका जी का विवाह था, असल राधा जी का संबंध नहीं रहा। इसको कोई कोई लोग तत्वदर्शी भी नहीं समझेंगे, ये रसिक लीला को समझने वाले ऐसे वैष्णव का आश्रम करेंगे वो लोग समझेंगे, सब लोग नहीं समझेंगे। तो ये यहाँ पर लीला हुई थी, बलदेव जी को भी पता नहीं चला, और तो बात क्या, कृष्ण का यह नखरा बलदेव जी भी नहीं जान सके। कुछ दिन दो चार दिन जब रह गए, बलदेव जी ने देखा भाई ये क्या मामला, पहले गोपियां अपने बच्चे से अधिक कृष्ण को प्यार करती थी, पहले कृष्ण को गोदी में लेने के बाद में अपने बच्चों को प्यार करती, आजकल ये मैं नहीं देखता, आजकल पहले अपने बेटे को ही लेती है और दोनों में बराबर प्यार हो गया, प्रेम हो गया, ये क्यों। और पहले गायें अपने बेटे को प्यार इतना नहीं करती थी, बछड़े को कृष्ण को दूध पिलाती थी, और आजकल नए जो बछड़े उनको छोड़ करके भी पुराने बछड़ों को पिला रही है, क्यों, पुराने बछड़े कौन बने हैं, कृष्ण, और नए बछड़े उनको प्यार नहीं करती, क्या बात है। नानकाज में एक वर्ष तक नहीं कुछ समझना ध्यान लगाया, हंसने लगे कृष्ण, अरे एक गोपी के जो तो नामैया के दूध से तेरा पेट नहीं भर रहा, अब इतनी गोपियों का लड़का बना तू ही है, ब्रज में जितने लड़के हैं तू ही बना हुआ, सबका दूध पीकर और उसमें भी पेट नहीं भरा, तो लाखों गायों का तू बछड़ा बनकर के उनका दूध पी रहा है, अरे ये क्या मामला। जिन गोपों की शादी है, अरे वो तो कोई अलग नहीं, ये किसके साथ के साथ में हुई, अरे तुम ही बन करके इतने लाखों करोड़ों और सब गोपियों से तुमने शादी की, इन सबकी इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं भी नहीं समझ सका। कृष्ण मुस्कुराने लगे, बलदेव जी ने सब समझा, से जानी कि सेम जनाई उनकी लीला को, उनके लीला का रहस्य को वही जान सकता है जिसको वो जना देंगे, अन्यथा बलदेव प्रभु भी नहीं जान सके, कृष्ण के स्वयं कलेवर उनके द्वितीय स्वरूप भी नहीं समझ सके। तो कायदेव वाले वो मूल संकर्षण महासंकर्षण नारायण ये क्या समझेंगे कृष्ण की लीला को। इसलिए कृष्ण की लीलाएं ऐसी ही हैं, ऐसे कृष्ण भी किंतु राधा जी का प्रेम नहीं समझ सकते। तब उनसे प्रार्थना करते हैं कि देवी जी आप प्रसन्न होइए हमारे ऊपर में, ये कृष्ण की महत्ता है, प्रेम की भीख मांगते हैं। हम लोग ऐसे स्थानों में सब गए थे, नाउ यू कैन एक्सप्लेन। आज हम परम सौभाग्य की बात है कि आज एकादशी है, ब्रज की परिक्रमा, बड़ी परिक्रमा हो रही है तीनों वनों की, और उसमें भी चार चांद लग गए आज से, जब बहुत कुछ हो दातावा जी महाराज जी का तिरुभाव दिवस है, वैष्णव का तिरुभाव और आविर्भाव दोनों एक ही तात्पर्य पर आए हैं, तो इसलिए आज हम लोग उनके जीवन चरित्र के संबंध में, उनकी शिक्षाओं के संबंध में भी हम लोग आज और कल हो सकेगा तो कल भी उनके चरित्र के संबंध में, यहाँ पर जो महाराज लोग भी आए हैं और भी लोग हैं कुछ बोलेंगे, पहले उसके संबंध में साधारण रूप में पर्यटक महाराज 15 मिनट बोलेंगे बांग्ला भाषा, और उसके बाद में मैं फिर कुछ बोलूंगा, पर्यटक महाराज जी को दे दूंगा।
और राधाकृष्ण की सेवा में नहीं होंगे।
तत्पश्चात उनकी कुछ ऐसी व्यवस्था हुई कि मैं नवदीप मंडल में जाऊं, इसलिए वहां से नवदीप मंडल में आए और वहीं नवदीप कुलिया में रहने लगे, किंतु सर्वदा भक्ति विनोद ठाकुर के साथ में मिलते रहे। भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दासराज महाराज जी से सब कुछ पाया था भागवत परंपरा में, उसी तरह से भागवत परंपरा में भक्ति विनोद ठाकुर से गौरकिशोर दास वाजपेयी जी ने प्राप्त किया। यद्यपि भक्ति विनोद ठाकुर के दीक्षा गुरु अलग हैं और उनके भागवत परंपरा में गुरु हैं जगन्नाथ दास राज महाराज, किंतु जितना वो भजन की प्रणाली है वो सब जगन्नाथ दास राज महाराज जी से पाया। यद्यपि विपिन बिहारी गोस्वामी से उन्होंने दीक्षा ली, उनको अपनी चैतन्य के चामृत के अनुभाष अमृत प्रवाह भाष्य में उनको प्रणाम भी किया है, तो भी उन्होंने भागवत परंपरा को से समझ करके अपने शिक्षा गुरु को ही भागवत गुरु परंपरा को सब समय उनको आदर दिया है। दूसरे तरफ में ये गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज भी दीक्षा प्रणाली उनकी जाह्नवा परंपरा में गुरु प्रणाली में हुई, किंतु उन्होंने श्री भक्ति विनोद ठाकुर को अपना शिक्षा गुरु बनाया और सब समय उन्हीं से आलाप होता था। दोनों आंख के जागतिक दृष्टि से अंधे होने पर भी वो रोज प्राय भक्ति विनोद ठाकुर के यहाँ उनके आश्रम में स्वरूप गंज में जाया करते थे, जहाँ उनकी समाधि है गोद्रम कुंज में, और वहां पर भक्ति पुनों से इनका मिलन होता था। वहीं पर श्रील प्रभुपाद जी विमलानंद सरस्वती बड़े विद्वान आवाज ज्योतिष के आशुतोष, उस समय बंगाल में उनके बराबरी का कोई नहीं था, आशुतोष मुखर्जी ने उनके लिए वहां के बंगाल यूनिवर्सिटी में उसके लिए स्पेशल चेयर रख दी थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, जो आप जब तक हैं ये चेयर खाली रहेगी नहीं तो आप आइए और लोगों का उपकार कीजिए। उन्होंने कहा कि मैं आकाश का तारा और पृथ्वी का बाल गिनने के लिए नहीं आया हूं, हम तो आए कृष्ण की सेवा करने के लिए और कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए आए, आप इसकी गंभीरता नहीं समझ सकेंगे, ये भक्त लोग समझ सकते हैं। उन्होंने ग्रहण नहीं किया। वही भक्ति विनोद ठाकुर जी के परामर्श से गौरकिशोर दास महाराज जी को अपना गुरु पद पर ग्रहण किया। श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन चरित्र में खुद लिखा है, मुझे अभिमान था अपने विद्या का, बड़ी दीनता से, किंतु यह समझ में जी उनका ये दीनता से करें, वो निरक्षर का और अंधे, हम बार बार उनके चरणों में निवेदन किया, उन्होंने हमको ठुकरा दिया, हमारी विद्या को उन्होंने लात से ठुकरा दिया। उन्होंने कहा तुम बड़े भारी विद्वान हो, भक्ति विनोद ठाकुर के तुम पुत्र हो, मैं तुम्हारे गुरु होने चुके नहीं, किंतु उन्होंने प्रतिज्ञा की यदि दीक्षा लूंगा तो नहीं चलूंगा दूसरे से किसी नहीं, मैं भूखो मर जाऊंगा, उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। अंत में भक्ति विनोद ठाकुर जी के परामर्श से गौरकिशोर दास महाराज जी ने इनको अपने शिष्य के रूप में ग्रहण किया। इसके द्वारा दिखलाया जैसे कितने बड़े भारी विद्वान भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र होते हुए भी इतने बड़े विद्वान और गौरकिशोर दास महाराज जी निरक्षर, विद्या के द्वारा भगवान को नहीं पाया जा सकता है। नानात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया बहु नास्ते न जमयेव एक विवृति न लभ्य कर्तात्मा विवृति, अनुस्वार और विसर्ग के कर्तव्य से भगवान नहीं दिखते। इसको खूब अच्छी तरह से समझना चाहिए। हम लोग पंडित होकर के भक्ति स्वामी सिंधु उज्ज्वल मणि तत्व संदर्भ इत्यादि हम लोग समझ लेना चाहते हैं, ये कदापि संभव पर नहीं है, इसको भूल जाओ। जो लोग ऐसा करते हैं भूल होगा क्या, वो लोग स्त्रियों के जाल में फंस जाएंगे, वो लोग माया में फंस जाएंगे और भक्ति से सदा के लिए दूर हो जाएंगे, इसलिए विद्या के द्वारा भगवान नहीं मिलते हैं, बहुत पढ़ने से भी नहीं मिलते हैं, अनुसार विचार के कसर से भी नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, अनुगत्य के बिना नहीं मिलेंगे, इसलिए अनुगत्य में बच्चों के अनुगत्य में श्रवण करके सब उनको पाया जा सकता है, तन्नाम रूप चरितादि सुकृतनानुक्रमेण मनसा नियोज्य तीर्थन ब्रजे तदानुरागी जननुगामी कालम नये रख जामी पुत्र। ये समस्त शिक्षाओं का सार है, आप लोग इसको समझेंगे विद्या के द्वारा पांडित्य के द्वारा आप अपना नहीं दूर सकते। कृष्ण भक्ति तो बहुत दूर रहे, कोई कर्म में भक्ति नहीं है, वो कर्म है, भक्ति होगी कब जरूर वैष्णव के अनुगत्य में, एक बार विश्वास रखते हुए भक्ति में विश्वास हो, भक्ति जितनी आएगी अनर्थ दूर होगा, नहीं तो साधारण एक काम से लक्ष्य से भी छुटकारा नहीं होगा, अनर्थ क्रोध से भी छुटकारा नहीं पा सकते हैं। ये सब शिक्षाएं श्री गौकृष्णदास आबाद महाराज जी के जीवन में पाते हैं और भी पाते हैं। वो नवद्वीप में आए, किस लिए आए, अनर्थ युक्त व्यक्ति वृंदावन में रह करके राधा कृष्ण की कृपा को नहीं प्राप्त कर सकते। कृष्ण नाम कृष्ण धाम ये सब चीजें हैं, कृष्ण नाम करे अपराध का विचार, कृष्ण धाम कृष्ण नाम रूप गुण लीला ये अपराध का विचार करते हैं। अपराधी व्यक्ति कृष्ण नाम लेने से भी प्रेम नहीं आएगा, किंतु गौर नित्यानंद दे ना ये सब विचार नाम ले या प्रेम दें बहुत अस्तुदार एवं दयालु आज जगत त्रिभुवने नहीं। गौ धाम गौ नाम गौ के पर का लोग बड़े दयालु बिना स्वर्ग दामोदर जो महाप्रभु के परिकर है, और इधर में गदाधर पंडित जी हैं, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी और ये सब गोस्वामी लोग हैं, ये महाप्रभु के परिकर, इनकी कृपा के बिना ब्रजलीला में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए नवद्वीप में महाप्रभु जी के घाट में डूबो और उतरो कहा केसी घाट में, जहां पर की रासलीला इत्यादि हो रही वहां पर उतरो। गौरव वृंदावन भेद न देखी हई ब्रजवासी धाम हई राधा दासी। इसलिए गौतृदास महाराज जी ब्रज को छोड़ करके आए, हम साधकों के लिए ये दे रहे हैं एक देव उपदेशी है। दूसरी बात गौतृदास महाराज जी के संबंध में पर्यटक महाराज जी ने बताया, बहुत बैरागी थे, पाषाण रेखा जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी की परम बैराग्यवान, उसके बाद में बैराग्य जीवन देखा जाता है गौतृदास महाराज पाषाण की रेखा मिट जाएगी किंतु इनका बैराग्य नहीं मिटेगा। भूख लगी वृंदावन में कहीं राधा कुंड में तो जमुना का या उसका मिट्टी खा लिया, खाएगी ओ तुम रसगुल्ला खाएगा राबड़ी और छाछ खाएगा अच्छा तो खिलाते नीम पीस कर पी लेते लो खाओ, और जमुना का पीछे निकाल करते राधा कुंड का खा लेते आंख चली गई। बहुत अच्छा हुआ ये आंख हमको तंग करती थी, ये आंख चली गई बहुत अच्छा हुआ, हृदय में आंख हमारी खुले दिन और मंगल की भांति। ऐसा आदर्श नहीं ग्रहण कर, यदि हमारी आंखें यदि किसी में लग जाती हैं किसी स्त्री के प्रति उस आंख में सुई चुभा दो, यह बहुत कुछ होता महाराज दिन और मंगल से समझिए। उस प्राण रखने का जरूरत क्या है, वह शरीर की जरूरत क्या है, यदि कृष्ण भजन नहीं हुआ हम गुरु वैष्णव की सेवा नहीं कर सके, इस चीज को समझिए। इसलिए बहुत कुछ होता है महाराज जी नवद्वीप में धाम में आश्रय करके विषय लोगों के पास में नहीं जाते, यहां तक कि पैखाने में नवद्वीप में पैखाने में गए ये कहते हैं कि पैखाना बंद पड़ा था, उसको बंद पड़ा जाने की जरूरत क्या, उसको लाही हुआ समझो फर्ज क्या, पैखाना का दुर्गंध उनको नहीं लगता है किंतु विषय लोगों का दुर्गंध उनको लगता है जो भजन प्रिय होते हैं। इसलिए पैखाने चालू रहने पर भी कोई हज में उसी में चले गए, और उसके बाद में उनके देखने से ही जमादार ने जाकर रिपोर्ट कर दिया, अरे बाबा जी महाराज यहाँ पर हरि नाम कर रहे हैं, पैखाना बंद हो गया। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कहाँ कहाँ के कृष्ण नगर से बड़े बड़े अफसर लोग पुलिस के सुपरिंटेंडेंट एजेंसी आदि आए, बाबा जी महाराज आपके लिए भजन कुटी बना देते हैं आप वहां पर भजन कीजिए। उन्होंने कहा हमारी खूब मैं कबाड़ नहीं खोल सकता, लाख कहा। और यदि हम लोग रहते हैं तो क्या करते, हरि नाम कीर्तन करते हुए करताल मृदंग करते हुए पुलिस के एसपी को बुला लाते, नहीं तो यहाँ पर अत्यंत मायावादी कोई प्रेसिडेंट है या प्रधानमंत्री या कोई मंत्री है तो उसको बुला लेंगे कि हमारे यहाँ हमारे प्रभुपाद जी का सेंटेनियल है, आप कृपा करके पधारिए। रुद्राक्ष वाले बड़े बड़े माला वालों लोगों को बुला लेंगे और भी हेमा मालिनी को बम्बई से बुला लेंगे, कोई हर्ज नहीं। आज तक प्रचार का तरीका ये हो गया। गौकिशोर दादाज महाराज ने कहा नहीं नहीं, मेरी तबीयत बहुत अस्वस्थ, मैं उठ नहीं सकता। एक दो दिन उन्होंने प्रतीक्षा की, इसके बाद में लौट गए। किंतु देखो उनके लिए तो ऐसा, और हमारे गुरु जी प्रभुपाद के शिष्य वहां गए, उनके साथ में पूज्य मान नहीं महाराज जी थे, उनका ब्रह्मचारी का नाम गौर गोविंद जी था और थी सरोज पिसीमा और उनकी और एक थी उनकी बहन माने गुरु प्रभुपाद जी की शिष्या, वो जो पीछे से रहती वो भी टीचर थी, उनका नाम नहीं याद आ रहा। नहीं नहीं कौन पिसीमा, ये चार आदमी गए थे प्रभुपाद के आदेश से उनको दर्शन करने के लिए। तो हमारे गुरु महाराज जी ने कहा महाराज बाबा जी महाराज हमारा प्रभुपाद कृपा प्राप्त हमारा कहा अनुगत तिनी आदेश दिए थे, उन्होंने भेजा है आपका दर्शन करने के लिए। ओम तुम्हारा सरस्वती ठाकुर पाठी है अच्छा 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 बस समय समय तीन कपाट खुले देने बस आई नहीं गुरु माता चरण से पकड़ कुछ कुछ आलाप खोलो तेरा प्रार्थना कर अपना अनुग्रह करूंगा महादेव पर। उन्होंने कहा तुम्हारे जीवन की सारी विपदाओं को मैंने अपने सिर पर ग्रहण कर लिया, तुम भगवान भक्ति प्रचार करो, अपने गुरु की वाणी और महाप्रभु के वाणी का प्रचार करो, यदि कुछ इसमें कुछ भी आएगा वो सब हम अपने सिर पर ग्रहण करते हैं। गुरु महाराज जी रो रो करके ये बतलाते थे हमारे ऊपर में कितनी झंझट विपत्तियां और आपत्तियां आई प्रचार में, विरोधियों का पक्ष हमको जान से मारने के लिए किया चेष्टा, किंतु प्रभुपाद की कृपा से सब वायु में उड़ करके न जाने कहां चला गया और उनके वजह से अंत तक मैं भजन करता रहा, उनके बल से बलियान हो करके मैंने सब समय निर्भीक होकर के सब सत्य का मैंने प्रचार किया। गुरु महाराज जी कहते थे। और भी एक समय कोई आया उनके पास में, बाबा जी महाराज आप कृपा कीजिए हमारे ऊपर में, एक बार बोला दो बार बार तीन बार कहा कि कृपा नहीं दी कृपा देगा, उन्हें दो कोपिन खोल करके उसका जो लोग पहनो और यहीं पर और भजन करो। वो आदमी वहां से जल्दी से भागा, यदि वो दो कोपिन ले जाता तो क्या होता बदलाव, तो जगत में महान भक्त बन गया होता। हम भी इसमें से किसी को कहेंगे ना अच्छा मैं अपना दो कोपिन देता हूँ ले लो ये मेरी कृपा, हम समझते हैं कि सभी लोग भाग जाएंगे, दो एक है जो ले लेंगे, बाकी सब लोग हमारे सामने भी बैठे हैं वो लोग भी भाग जाएंगे। तो बाबा जी महाराज की कृपा का है हम लोग नहीं समझते। एक समय एक और आदमी आया बाबा जी महाराज के पास में कुछ दिन रहा और रहने के बाद में वो चला गया विवाह शादी की, विवाह करने के बाद में अपनी जोड़ू को लेकर के अपनी पत्नी को लेकर के आया, बोले बाबा जी महाराज अपना अद्भुत कृपा अपना कृपा से आपकी कृपा से मैंने कृष्ण दासी एक संग्रह किया है। कृष्णदासी संग्रह हुई था, हाँ तुमने कृष्णदासी तुमको तुमने पाया है ठीक है ठीक है, तुम देखो एक बात करना जैसे गोप लोग गोपियों की पूजा करते थे क्योंकि वो कृष्ण की प्रिया थी, तो ये समझना कि कृष्ण की दासी का ना वो कृष्ण की दासी है, खबरदार जीवन में कभी उसको अपना भोग्या बनाया अपनी दासी बनाया कृष्ण के बदले तो तुम्हारा सर्वनाश होगा, ये समझ रखो बस झट वहां से। फिर बाबा जी महाराज जी को मुख नहीं दिखाया। एक आदमी ने कहा ये बाबा जी मैंने नवद्वीप में एक कट्ठा जमीन खरीदा है, तो बड़ा सौभाग्यवान तो बड़े बड़े सौभाग्यवान हो, नवद्वीप में एक भूमि पृथ्वी के सारे वैभव से नहीं खरीदी जा सकती है, यहाँ का भी गुरु वृंदावन जो हुए सबको बेचने पर भी नवद्वीप की एक धूनी कला का कोई मूल्य नहीं चुका सकता, तुमने एक कट्ठा जमीन वहां पर खरीद लिया, वाह वाह, वो समझ गया और वहां से भागा। एक समय कासिम बाजार का नरेश उनके पास में आए। उन्होंने कहा कि मैं विश्व वैष्णव सम्मेलन कर रहा हूँ, वहां पर विश्व के जितने बड़े बड़े वैष्णव हैं उनको बुलाऊंगा, आप कृपा करके सभापति का आसन ग्रहण कीजिए। उन्होंने कहा कि किस लिए हमको ले जाएगा, किस लिए? तो प्रचार होगा, तुम भजन करना जगत को कराने के लिए करा तो हाँ, तो तुम वो समझ करा, तुम हमारे पास में आ जाओ, दो कॉपी में तुमको दूंगा, खिलाऊंगा पिलाऊंगा भिक्षा करके, तुम हमारे पास में रहो और तुम भजन करो, इससे तुम प्रचार कर सकेगा, और तुम हमको ले जा करके तुम अपने विषय के घर में, इससे प्रचार नहीं होगा, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम्हारा अभिमान होगा जो बाबा महाराज जी को ले आया, इसलिए इस सब को छोड़ करके तुम हमारे पास में आओ। बस उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके वो काशिम राजा जी वहां से भाग गए। ऐसे ऐसे बहुत से जीवन के चरित्र की घटनाएं हैं और आज मैं जाने जा रहा है, इसलिए आज मैं यही अपने मैं अपने वक्तृता को यहीं पर विश्राम देना चाहता हूं और गौर कुशोदास राज महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं अपनी तरफ से और आप सब लोगों की तरफ में, बाबा जी प्रसन्न होकर के हम लोगों का आशीर्वाद दें, जो वैसे ही गुरु निष्ठा हमारे अंदर में हो, ऐसे ही भजन में निष्ठा हो, हमारा त्याग बराबरी आशा हो, किंतु शुष्क वैराग्य न होकर के क्या जैसा युक्त वैराग्य हो और कृष्ण के भजन हम लोग अब यही प्रार्थना करके मैं वक्तव्य समाप्त करता हूँ।